नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। काउंटडाउन टू रिचेज रोंडा बर्न की स्वसहायता और धन संबंधी मानसिक आदतों पर केंद्रित पुस्तक है। द सीक्रेट और द ग्रेटेस्ट सीक्रेट की लेखिका बर्न इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी परिचित सोच को 21 दिनों के निर्देशित अभ्यास कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। पुस्तक का मूल दावा है कि आर्थिक संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि धन के बारे में भय, कमी की अपेक्षा और सीमित विश्वास भी व्यक्ति के व्यवहार को आकार देते हैं। इसका उद्देश्य बजट बनाने, निवेश चुनने या कारोबार चलाने की तकनीकी शिक्षा देना नहीं है। इसके बजाय यह पाठक को अपनी धन संबंधी भावनाओं, भाषा और दैनिक प्रतिक्रियाओं को बदलने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन के अभ्यासों के माध्यम से पुस्तक अभाव केंद्रित सोच से समृद्धि केंद्रित सोच की ओर बढ़ने का प्रस्ताव रखती है। इसमें कृतज्ञता, सकारात्मक अपेक्षा, धन के आने जाने के प्रति भावनात्मक दृष्टि और पुष्टि वाक्यों को प्रमुख साधन माना गया है। एक ऑडियो पुष्टि ऐप भी पुस्तक की सामग्री के साथ उपलब्ध बताया गया है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, 21 दिनों का ढांचा विचार को दैनिक धन आदत में बदलता है। पुस्तक की सबसे स्पष्ट विशेषता इसका 21 दिनों का क्रमबद्ध प्रारूप है। बर्न का उद्देश्य केवल यह कहना नहीं है कि पाठक धन के बारे में अच्छा सोचे, बल्कि उस विचार को प्रतिदिन दोहराए जाने वाले अभ्यासों से जोड़ना है। यह ढांचा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें प्रेरक विचारों की अपेक्षा एक सीमित अवधि वाला स्पष्ट कार्यक्रम अधिक सहज लगता है। छोटे दैनिक कदम किसी व्यक्ति को यह देखने का अवसर देते हैं कि वह खर्च, आय, देनदारियों या अनिश्चितता पर तुरंत कैसी प्रतिक्रिया देता है। इस अर्थ में पुस्तक का व्यावहारिक केंद्र आत्मनिरीक्षण और नियमितता है। 21 दिन की सीमा भी कार्यक्रम को अनंत आत्म सुधार परियोजना के बजाय आरंभ करने योग्य प्रयोग बनाती है। फिर भी इसे स्थायी आर्थिक बदलाव की पर्याप्त अवधि मानना उचित नहीं होगा। वास्तविक वित्तीय सुरक्षा आय, बचत, ऋण, अवसर और परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। पुस्तक का ढांचा इन बाहरी कारकों का विकल्प नहीं है। इसका संभावित लाभ यह है कि पाठक पहले अपनी आवेगी, भय आधारित या निराश प्रतिक्रियाओं को पहचान कर अधिक शांत निर्णयों के लिए मानसिक जगह बना सके। इसलिए इसे व्यवहारिक वित्तीय योजना के पूरक मानसिक अनुशासन की तरह पढ़ना अधिक यथार्थवादी है। दूसरा, कमी की मानसिकता को आर्थिक तनाव के भावनात्मक स्रोत के रूप में देखना। काउंटडाउन टू रिचेस का केंद्रीय सिद्धांत कमी की मानसिकता है। बर्न के अनुसार, जब व्यक्ति लगातार यह मानकर चलता है कि धन अपर्याप्त है, अवसर बंद है या खर्च होना अनिवार्य नुकसान है, तब उसकी चेतना धन से जुड़े अनुभवों को भय के माध्यम से देखती है। पुस्तक इस पैटर्न को बदलने के लिए समृद्धि, संभावना और ग्रहणशीलता पर ध्यान देने को कहती है। इस विचार का व्यावहारिक पक्ष यह है कि धन संबंधी सोच निर्णयों को प्रभावित करती है। लगातार घबराहट व्यक्ति को टालमटोल, असंगत खर्च, जोखिम से अत्यधिक बचाव या हताश निर्णयों की ओर ले जा सकती है। अपने विश्वासों को पहचानना इसलिए उपयोगी आत्म परीक्षण हो सकता है। हालांकि पुस्तक का व्यापक दावा कि विचार सीधे आर्थिक परिणाम पैदा करते हैं, प्रमाण आधारित व्यक्तिगत वित्त की स्थापित व्याख्या नहीं है। आर्थिक स्थिति पर वेतन, बाजार, पारिवारिक दायित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक अवसरों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सीमा को ध्यान में रखकर पुस्तक का सबसे संतुलित उपयोग यह होगा कि पाठक कमी की भाषा को पहचाने, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें और फिर ठोस वित्तीय कदम लें। अर्थात, मानसिक बदलाव को कारण का एकमात्र समाधान नहीं, बल्कि बेहतर व्यवहार का संभावित आधार समझें। तीसरा, धन के बाहर जाने पर कृतज्ञता का अभ्यास और उसकी व्यवहारिक सीमा। पुस्तक से जुड़ी सामग्री में धन के बाहर जाने के समय कृतज्ञता पर विशेष जोर मिलता है। बर्न का तर्क है कि बिल, खरीद या भुगतान के साथ चिंता जोड़ने से व्यक्ति धन के प्रवाह को भय की दृष्टि से देखने लगता है। इसके विपरीत, भुगतान करते समय उपयोगिता, सेवा या उपलब्ध संसाधन के लिए धन्यवाद का भाव रखने से विश्वास और खुलापन विकसित हो सकता है। यह विचार खासकर उन लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है जो हर खर्च के बाद अपराध बोध या घबराहट अनुभव करते हैं। भावनात्मक रूप से शांत होने पर व्यक्ति खर्च को विनाश के बजाय किसी आवश्यकता, सुविधा या प्रतिबद्धता के विनिमय के रूप में देख सकता है। इससे रिकॉर्ड देखने, बिल समय पर भरने और आगामी खर्च की योजना बनाने की क्षमता बेहतर हो सकती है। लेकिन कृतज्ञता का अर्थ अनियंत्रित खर्च को उचित ठहराना नहीं है।
चमका 하죠. 허디는 카박마 대단이다 어가사리카 바다나부 차바디 텐티다 세남 어든나.
यदि आय सीमित है या ऋण बढ़ रहा है तो सकारात्मक भावना के साथ खर्च सीमा, आपात बचत और ऋण प्रबंधन भी जरूरी है। पुस्तक की अवधारणा का जिम्मेदार प्रयोग यह है कि भुगतान के समय भय को कम किया जाए पर वित्तीय तथ्यों से नजर न हटाई जाए। इस तरह कृतज्ञता भावनात्मक संतुलन का उपकरण बनती है, लेखांकन का विकल्प नहीं। चौथा, पुष्टि वाक्य और ऑडियो अभ्यास से ध्यान की पुनरावृत्ति। काउंटडाउन टू रिचेज में धन और समृद्धि से जुड़े पुष्टि वाक्यों को अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। आधिकारिक सामग्री के अनुसार पुस्तक के साथ एक डाउनलोड योग्य ऑडियो ऐप भी दिया गया है जिसमें रोंडा बर्न की आवाज में धन संबंधी पुष्टि वाक्य हैं। यह तत्व पुस्तक को केवल पढ़ने की सामग्री नहीं रहने देता बल्कि सुनने और दोहराने योग्य दिनचर्या में बदलने का प्रयास करता है। पुष्टि वाक्यों की उपयोगिता मुख्यतः ध्यान को दिशा देने में हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को केवल असफलता, ऋण या कमी के संदेश देता है तो वैकल्पिक भाषा उसे अपनी स्वचालित नकारात्मक धारणाओं पर ध्यान देने में सहायता कर सकती है। ऑडियो प्रारूप नियमितता बढ़ा सकता है, विशेषकर उन पाठकों के लिए जो लिखित अभ्यास के बजाय सुनकर सीखना पसंद करते हैं। फिर भी पुष्टि वाक्य अकेले आय उत्पन्न नहीं करते और न ही वे वित्तीय समस्या का प्रमाणित समाधान है। इनका मूल्य तब बढ़ता है जब इन्हें ठोस कार्यों से जोड़ा जाए, जैसे आय के अवसरों की खोज, खर्च दर्ज करना, बकाया भुगतान की योजना बनाना और विशेषज्ञ सलाह लेना। पुस्तक की विशिष्टता इस पुनरावृत्ति आधारित अनुभव में है, जबकि इसकी सीमा यही है कि भावनात्मक प्रेरणा को वास्तविक वित्तीय कार्रवाई का स्थान नहीं दिया जा सकता। अंत में तकनीकी वित्तीय मार्गदर्शन के बजाय आंतरिक प्रतिरोध पर केंद्रित दृष्टि, यह पुस्तक व्यक्तिगत वित्त की पारंपरिक पुस्तकों से अलग स्थान लेती है, जहां अधिकांश वित्तीय मार्गदर्शिकाएं बजट, निवेश, बीमा, कर, सेवानिवृत्ति या ऋण चुकाने की विधियों पर केंद्रित होती हैं, वहां बर्न भय, नियंत्रण, प्रतिरोध और लगाव जैसी आंतरिक अवस्थाओं को धन संबंधी व्यवहार का केंद्र मानती हैं। उद्यमियों और आर्थिक अनिश्चितता झेल रहे लोगों के लिए यह कोण प्रासंगिक लग सकता है, क्योंकि निर्णय केवल गणना से नहीं तनाव और आत्मविश्वास से भी प्रभावित होते हैं। पुस्तक का संदेश यह है कि बाहरी उपलब्धि के पीछे व्यक्ति की आंतरिक धन कथा काम करती रहती है। यह दृष्टि उन पाठकों को आकर्षित करेगी जिन्हें लगता है कि वे जानकारी जानते हुए भी उसे लागू नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बचत की जरूरत समझता हो फिर भी भविष्य के भय में खर्च कर दे तो समस्या केवल ज्ञान की नहीं रह जाती, पर इस आंतरिक दृष्टि की सीमा भी स्पष्ट है। पुस्तक से पाठक को निवेश आवंटन, कानूनी सलाह, व्यवसाय मॉडल या ऋण पुनर्गठन की विशिष्ट पद्धति नहीं मिलेगी, इसलिए इसका सर्वोत्तम स्थान विद्या शिक्षा के साथ एक पूरक पुस्तक का है। यह भावनात्मक बाधाओं को देखने का ढंग दे सकती है, जबकि धन प्रबंधन के तथ्यात्मक निर्णयों के लिए अलग विश्वसनीय स्रोत आवश्यक रहेंगे। निष्कर्ष में, काउंटडाउन टू रिचेज उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो धन के विषय में अपने डर, अभाव की आदत, खर्च के बाद की चिंता या अवसरों के प्रति निराशा को समझना चाहते हैं। द सीक्रेट की विचारधारा से परिचित पाठकों को इसमें उसी दृष्टि का अधिक केंद्रित 21 दिन का धन विषयक रूप मिलेगा। विशेष रूप से यह उन लोगों को उपयोगी लग सकती है जो प्रेरणा तो पाते हैं पर उसे दैनिक अभ्यास में ढालने के लिए एक सरल क्रम चाहते हैं। कृतज्ञता, पुष्टि वाक्य और धन के प्रवाह को लेकर भावनात्मक जागरूकता व्यक्ति को अपने प्रतिक्रियात्मक व्यवहार पर ध्यान देने में मदद कर सकती है। ऑडियो पुष्टि सामग्री इसे नियमित सुनने योग्य अनुभव भी बनाती है। फिर भी पाठक को इसके दावों को विवेक के साथ देखना चाहिए। मानसिकता पर काम करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आय बढ़ाना, खर्च नियंत्रित करना, ऋण संभालना, बचत करना और जोखिम समझना अनिवार्य बने रहते हैं। यही कारण है कि पुस्तक को संपूर्ण वित्तीय योजना नहीं माना जाना चाहिए। समान श्रेणी की पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर तकनीकी धन प्रबंधन में नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोटे दैनिक अभ्यासों में बदलने के प्रयास में है। यदि कोई पाठक इसे सकारात्मक भावनात्मक अनुशासन और व्यावहारिक वित्तीय कार्रवाई दोनों के साथ अपनाता है तो यह अपने धन संबंधी व्यवहार पर विचार करने का उपयोगी प्रारंभिक ढांचा दे सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रोंडा बर्न, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।